अच्छा फिर आगे क्या? वह इजा अन अमना अल इंसानी आरादा व न अबिजानिबी। जब हम इनाम करते हैं ना इंसान पे, इंसान कौन सा इंसान? अक्सर इंसानों की यानी ये बात हो रही है, जो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे हैं, जो मोमिन बंदे हैं, उनकी बात नहीं है ये, वो हैं जो अल्लाह से दूर हुए हैं। जब उनके ऊपर अल्लाह ताला इनाम करता है ना, इनाम से मतलब है कि सेहत भी है, नेमतें भी हैं, जिंदगी के फरावानी रिस्की भी है, इल्म भी है, औलाद भी अच्छी हो गई, माल की रेल पेल भी हो गई, फिक्रें परेशानियां नहीं रही इस चीज की कि भाई क्या मैं कहाँ से खाऊंगा और कहाँ से आसाइशें मिली हुई हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लग्जरीज में रह रहे हैं आज, तो इंसान जो होता है ना, अक्सर उसका हाल ये होता है कि वो देने वाले को ही भूल जाता है, मुंह मोड़ लेता है, उससे शुक्र अदा नहीं करता, झुकता नहीं है उसके आगे, उसी को भूल जाता है जिसने नियमती दी है, वह न अभी जानी भी, और दूर हो जाता है अपने पहलू के साथ, यानी एराज करने लगता है, मैंने पूरी तरह ना दूर होना अपने पहलू के साथ, यानी फिजिकली भी दूर हो जाता है, स्पिरिचुअली भी दूर हो जाता है, ना नमाज का कोई होश है, ना दुआएं करने का। दुआएं किस बात की करनी है? वो तो वो दुआएं करें जिनको कोई मसले हैं, हम किस बात की दुआएं करें? हमारे पास तो सब कुछ है, अब नमाज का होश ही नहीं, रातों को पार्टियां हैं, एंटरटेनमेंट है ये वो, नमाजें किसने पढ़नी है? नमाजें तो वो पढ़े भाई जिनको कोई मसले हैं, हमें क्या मसले हैं? फिर उसकी ये एटीट्यूड हो जाता है, अल्लाह अकबर। यार अब बचाए के शुक्र गुजारी के वो और ना शुक्रा हो जाता है, नेमते उसको क्या उसका हाल कर देती है, होना तो क्या चाहिए इंसान और झुके ना अल्लाह के पास सामने, जितनी ज्यादा नेमते हैं और ज्यादा अल्लाह ताला को शुक्र करके दिखाए, अल्लाह तूने तो मुझे ज्यादा दिया, मुझे तो ज्यादा शुक्र करना। लेकिन जिस दिन अच्छा ज्यादा खा भी लेंगे उस दिन सोते ही ज्यादा रहेंगे, आज तो नमाज का भी नहीं दिल कर रहा, आज तो उठा ही नहीं जा रहा, सुस्ती आ जाएगी। और जिस दिन बन संवर लेंगे, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दे दी, अल्लाह ताला ने आपको अच्छा लिबास दे दिया, उस दिन और ही बेपर्दा होके फिरेंगे कि आज सबको ही मैं दिखाऊंगी मैं कैसी करती हूँ। हम उस वक्त ज्यादा अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं, आप नोट करें, जिस वक्त तुम्हारे पास नेमते ज्यादा आ जाते हैं, और हम सोचते हैं अब तो फन करने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है, मेरे पास इतना पैसा है, अब मॉल में ही सारा दिन गुजर गया, अब फजूल खर्ची, अब इसराफ, ये सब चीजें हो रही हैं, इसलिए कि अल्लाह ने दे दिया। तो ऐसे इंसान का हाल ये है कि वो खुशी मिले, नेमतें मिले, आसाइशें मिले, तो वो फूला नहीं समाता, वो अल्लाह को ही भूल जाता है, वह इजा मस्सहु शर, और जब उसको पहुंचती है तकलीफ का नहीं है उसा, तो वो हो जाता है मायूस, फिर इतना डिप्रेशन में चला जाता है, हाय ऐसे क्यों हो गया मेरे, यानी एक्सट्रीम रवैये। जब खुशी मिलती है तब भी आप देखें लोगों को, जब कोई खुशी मिलती है तो नेमते मिलती हैं, उनके हालात क्या हैं, जिनके पास जितनी ज्यादा नेमते उतने ही अल्लाह से दूर, इल्ला माशाल्लाह, इल्ला माशाल्लाह, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते, लेकिन अक्सरियत का हाल आप यही देखें ना, जितने मालदार, जितने दुनिया में करियर के लिहाज से जिनको आप कहते हैं सक्सेसफुल, जितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, सेहत भी है, हर चीज उनकी अच्छी चल रही है, उतने ही अल्लाह से दूर है, क्योंकि वो जरूरत नहीं समझते कि वो अल्लाह की तरफ आए। नल इंसाना लायतका रआहुस्तगना, इंसान सरकशी कर ही लेता है जिस वक्त अपने आप को मुस्तगनी समझता है, अपने आप को गनी समझ लेता है ना, कि मेरे मुझे नहीं आपको, तो वो सरकशी पे उतर आता है। इंसान नेमते मांगता तो है, लेकिन अल्लाह वही नेमते अता फरमाना कि हम में फरमा बरदारी रहे तेरी, तो ये एक एक्सट्रीम रवैया। इसी तरह जब आप खुशी देखें तो क्या करते हैं, पार्टिंग हो रही है, फिर नाच गाना, जो ही खुशी मिलेगी बजाय झुकने के, क्या कैसा बन जाता है इंसान अल्लाह की हदों को तोड़ने वाला। तो ये एक हाइपर सा पर्सन है, हाइपर, ऐसी पर्सनैलिटी इस्लाम के से मैच नहीं करती, कि दोनों हालतों में वो हाइपर है, खुशी मिल जाए तब भी नहीं हद पे रुकना, गम मिल जाए तो तब डिप्रेशन का शिकार हो जाना, खुश होते हैं तो कहते हैं हम अब हल्ला गुल्ला करेंगे, पार्टी होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। कई लोगों का तो जिंदगी पार्टी ही है ना, वो बस हर वक्त उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, हर वक्त शॉपिंग, मूवीज, पार्टीज। एक पार्टी खत्म होती है, दूसरे इवेंट की तैयारी, फिर उसके बाद वेकेशन आई तो उसमें कहीं एंजॉयमेंट शुरू कर दी। बस उनकी सारी जिंदगी यही है, वो नहीं देखते कि अल्लाह ताला क्या उसकी तरफ भी झुकना है, कोई अपनी आखिरत की तैयारी, कोई अपने वो नहीं, गुम है वो उसमें, गुम गर्क हो चुके। फिर अगर उसके बाद अल्लाह ताला उनको कोई मुश्किल भेज देता है, कोई आजमाइश आ जाती है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अल्लाह से बदगुमान होते हैं, गुस्सा करते हैं, जुबान से ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं, पता नहीं अल्लाह ने हमारे साथ पता नहीं ये कर दिया, क्यों हो गया ऐसे, क्यों ऐसे लगता है जैसे कि इनका हक था कि इनको हमेशा खुशियां मिलनी चाहिए, इनको हमेशा नेमते मिलनी चाहिए, और नाउज बिल्ला जैसे अल्लाह ने इनका हक मार लिया, मेरे ऊपर ये क्यों आया, मेरे ऐसे साथ क्यों हो गया, आप इसे बाहर होने लगते हैं। तो ये पर्सनैलिटी कोई ठहराव पर ही पर्सनैलिटी नहीं है, तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है, ये बताया जा रहा है। ये जब खुशी आए तो उसमें भी हद में रहें, अल्लाह के आगे झुकें। जब कोई गम आए, परेशानी आए, कोई मसला आ जाए, तब भी अल्लाह के आगे झुकें। और आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है, मोमिन के साथ ही ये होता है और किसी के साथ नहीं होता। वो खुशहाली आती है तो भी अजर ले लेता है शुक्र करके, तंगदस्ती आती है, मुश्किल आती है तो भी सबर करके, आजी करके, और वो फिर अजर ले लेता है। तो जो ईमान वाले होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। हमारे रवैये क्या होते हैं खुशियों के अंदर, और कोई परेशानी, खुदा ना खास्ता किसी हादसे का पता चल जाए, किसी की वफात का पता चल जाए, क्योंकि किसी का, तो कहते हैं नहीं, आई कांट बिलीव दिस, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे साथ होगा, ये ऐसे कैसे हो सकता है हमारे साथ। हालांकि हमें पता है कि हर जो भी आजमाइश है, जो भी सख्ती आती है, जो भी नुकसान होता है, या किसी की वफात होती है, तो इसके अंदर सबर करने के पर भी अजर है, और ये भी अल्लाह की हिकमत है कि वो ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमारे फौरी रिएक्शंस क्या होते हैं, सबर तो नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई ऐसी बात आती थी जो कि नहीं, मतलब जो मतलब ना ऐसी अपने हालात के मुताबिक की जैसे बात होती, उसके खिलाफ कोई बात होती थी तो फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह का शुक्र। तो समझ ले अगर इंसान के इसमें बेहतरी है, अगर मुसीबत भी आई तो इसमें बेहतरी, अगर बेहतरी ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई मुसीबत ना आती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ पर कितनी मुश्किल आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने बेहतरी, हर चीज में बेहतरी है ना, तो उनके साथ कोई बुरा तो नहीं किया कि करना था अल्लाह ने। और ये भी हम समझ लें कि जब हम बेहतरी कहते हैं, अगर हमें तो ये हाल हो जाता कि कोई बेहतरी का याद भी करा देना कि इसमें भी कोई खैर होगी, इसमें भी, तो हमें वो भी बुरा लगता कि ये कह क्यों रहे हो, हम ये यकीन करना चाहते हैं कि इसमें कोई खैर नहीं, इसमें कोई बेहतरी नहीं है, हो ही नहीं सकती बेहतरी, तो ये तो बेहतरी कह के हमें टीज कर रहा है। तो ये ईमान होना चाहिए मोमिन का, तो ना शिकायतें और ना गिले, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को किसी जानी या माली मुसीबत में मुब्तला किया जाता है, वो किसी से इसका इजहार नहीं करता, यानी ऐसे शिकायतें शिकवे और इस तरह के नहीं करता, तो अल्लाह के जिम्मे है कि उसको बख्श देगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम के बेटे, अगर तू सदमे की इब्तदा में, शुरू में सबर करेगा और अजर का तलबगार हो जाएगा, तो मैं जन्नत से कम पे राजी नहीं हूंगा, जन्नत तेरे लिए सदमे के शुरू में इंस्टेंट जो है सबर, उसकी वैल्यू बताई गई है। और ये भी याद रखें कि ये कोई गारंटी नहीं है कि हम दीन की तरफ आ गए तो अब हमारे पर तो कोई मुश्किल कभी आनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर पैगंबरों पे क्यों मुश्किल आए, वो हमसे तो कहीं ज्यादा बुलंद दर्जात वाले थे, हम क्या नेक है, फिर भी हमारे पर कोई मुश्किल आ जाती तो कहते हम तो नमाज भी पढ़ते थे, हम तो कुरान भी पढ़ते, हमारे ऊपर क्यों आ गई मुश्किल, यानी हम तो इतने नेक थे। आपका मतलब है नेक के ऊपर मुश्किल नहीं आ सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने कभी नेमत देकर देखना है कि आप क्या करते हैं, कभी नेमत छीन के देखना है कि आप क्या करते हैं, कभी इनाम करके देखना है और कभी शर भेज के देखना है, और देखें कि इन रवैयों के साथ कहीं मेरा रवैया तो मैच नहीं कर रहा। मैं क्या करती हूं जब कोई मुश्किल आ जाए, और मैं क्या करती हूं जब मेरे ऊपर कोई इनाम आए। बाज लोग इनाम के वक्त अपने आप को, नेमतों में अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते, और बाज लोग मुश्किल के वक्त अपने आप को संभाल नहीं पाते। समझ आई बात? अल्लाह हू अकबर। या अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले। कुल कह दीजिए, कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, सब अमल कर रहे हैं अपने शाकले के मुताबिक। शाकला क्या चीज होती है? अब शाकले का भी देख लें कि इंसान का शाकला यानी, शाकले के बहुत सारे मतलब है। शाकला यानी इंसान की आदात, उसकी इंक्लिनेशन, उसके रुझानात, उसके तबीयत, उसकी तबीयत उसकी कैसी है, ठीक है, उसकी जैसे कहते हैं ना, इसकी तबीयत, इसकी तबीयत में यही है, ठीक है, और इसी तरह उसको मिजाज जैसे कहते हैं, ये भी उसके अंदर आ जाता है। तो और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के शाकले को बनाते हैं, शेप अप करते हैं, और उसके अंदर इंसान का माहौल भी होता है जो उसका शाकला बनता है, उसके साथ कोई वाकयात हो जाते हैं जिंदगी में, वो भी उसका शाकला उसी तरह का बना देते हैं, किसी सोहबतें भी होती हैं उसकी जो उसके शाकले को बनाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी आपका जो इर्द गिर्द का माहौल, आपके सोहबत, आपकी किस तरह की आपकी परवरिश हुई है, उस तरह से आपका ज़हनी सांचा जो बनता है वो आपका शाकला है। तो जिसको आपकी आपकी जो पर्सनैलिटी शेप आप होती है वो आपका शाकला है, आपके जो ट्रेंड्स, आपके जो कैपेबिलिटी बनती है आपके अंदर आती है सलाहियत, कोई कोई ये चीजें इंसान का शाकला होती है, और ये मोल्ड हो सकती हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो के जहालत के अंधेरों में थे, उनके शाकले को कैसे बदला, एक पाक और साफ पाकीजा माहौल देकर, पाकीजा मजलिस से कुरान के जरिए। तो इंसान के अंदर ना चेंज आती रहती है। आप देखें जैसे आप जो अब कितनी दफा कुरान पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका शाकले में तब्दीली आई है ना, उनके एनवायरनमेंट चेंज हुई, उनका माहौल चेंज हुआ, उनके दोस्त अहबाब चेंज हुए, उनकी बातें चेंज हुई इर्द गिर्द की। तो ये असर अंदाज होती है जहां इंसान रहता है, जो देखता है, जो सुनता है, जो फील करता है, जो उसके इर्द गिर्द वाकयात होते हैं, उस सब उसके ऊपर उसका शाकला उस तरह से उस तरह से ढाल रहे होते हैं, एक सांचा समझ रहे हैं, उस इंसान की पर्सनैलिटी उसमें ढल रही होती है, ठीक है, तो उसके मुताबिक ही इंसान अमल करता है। तो इसका मतलब है कि इंसान अपने शाकले को बेहतर करने के लिए कोशिश करता रहे, अपनी तबीयत को, और पहचाने कि मेरा शाकला क्या है। तो यानी इसकी सेकंड नेचर जिसको कहते हैं ना, कि इंसान की सेकंड नेचर बन जाती है कई चीजें, और उसका अमल उसी के मुताबिक हो जाता है। रस्मों रिवाज भी इसमें काम करते हैं, जिस रस्मों रिवाज में आप रहते हैं, जिनमें जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, जिनमें आप ग्रो अप हुए होते हैं, इसीलिए आप देख लें कि हमारा शाकला डिफरेंट है, जो ऐसे दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, जो बच्चे यहाँ पे बॉर्न एंड रेज होते हैं उनका शाकला ही अलग है। देखते हैं ना आप, शाकला उनका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जाहिर है माहौल उनको डिफरेंट मिला, सोबतें डिफरेंट मिली, रस्मों रिवाज डिफरेंट है। तो इंसान नेक लोगों की सोबत अपनाए, अच्छी आदत को चाहे, क्योंकि इससे इंसान की तबीयत पे असर होता है, वो उसकी तबीयत बन जाती है, सेकंड नेचर उसका शाकला बन जाती है, तो इंसान फिर उसी के मुताबिक काम करता है। जिसको कहते हैं ना मिजाज बन गया मेरा, ये मेरा मिजाज है, तो अपने मिजाज से ही इंसान मानूस होता है, और फिर इंसान उसके मुताबिक काम करता है। जैसे है अलखबीसातु लिलखबीसीना और तय्यबातु लित्तय्यिबीना, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, उनको वही अच्छे लगते हैं, वही उनसे उन्हीं से वो मानूस होते हैं, वही उनके मिजाज के मुताबिक होते हैं, पाकीजा के लिए पाकीजा, हर एक मिजाज जैसे होते हैं ना उस तरह वो काम करता है। फरब्बुकुम आलम बिमन वो अहदा सबीला, अल्लाह ताला को ही पता है कि कौन ज्यादा हिदायत पर है रास्ते के एतबार से। हर एक समझता है कि हम ही सही है, हमारा ही काम सही है, हमारा ही तरीका सही है, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है किसका ज्यादा हिदायत ज्यादा कौन ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो सोच हमारी बनती है ना इसको तब्दील करना आसान नहीं होता, लेकिन हो सकती है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, इंसान कंडीशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कुरान से कंडीशनिंग होती है इंसान की, तो अपने शाकले को सही रखने के लिए इंसान कोशिश करे। शाकला शक्ल से है ना, ये कहो तो हमारी जाहिरी शक्ल होती है, एक हमारी अंदर की भी तो कोई, एक जहन की भी तो कोई शक्ल है ना, वो जिस तरह जहन हमारा बना हुआ है, जिस तरह हमारी सोच बनी हुई है, बहुत कम लोग छोड़ते हैं उसको, ज्यादातर लोग उसी के ऊपर रहते हैं सारी जिंदगी, उनको कुछ भी कह दो, कुछ भी सुना दो, कुछ भी बता दो। आप देखें एक बदुअन अपनी तरह से, उसका शाकला ही वैसा है, उसी तरह बात करेगा, उसी तरह चलेगा, उसी तरह खाए पिएगा। एक का शाकला, जो शहरी लोग हैं उनका शाकला डिफरेंट हो जाता है, पढ़ पढ़ लिख जाता है उसका शाकला अलग हो जाता है, तो बिल्कुल एक जाहिल है उसका शाकला अलग होता है। वो अपने मुताबिक उस मुताबिक ही काम करते हैं। फिर मेरी बात समझ आ रही है? वह यस अलूनक आने रूह, और वो रूह के बारे में आपसे सवाल करते हैं। ये किसने सवाल किया था? बाज जगह पे आता है कि यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में थे, तो वहां पे यहूदी गुजर रहे थे, तो उन्होंने आके ये सवाल किया कि हम देखते हैं इनको आता है कि नहीं आता इस बारे में, इसका जवाब आता ही नहीं, ये पैगंबर है अगर अल्लाह के तो इसका जवाब दे सकेंगे। बाज जगह पे आता है कि नहीं, मुशरिकीन मक्का की मक्की सूरत है, मुशरिकीन मक्का ने यहूद से पूछा था ना कि हम क्या सवाल करें, तो उन्होंने कहा आप तीन सवाल करें, असहाबे कहफ के बारे में, ज़ुल्करनैन के बारे में, और रूह के बारे में। अगर इनमें दो सवालों का भी जवाब दे दिया तो इसका मतलब अल्लाह के नबी हैं। तो जो दो पहले सवाल थे उनका तो जवाब आपको सूरह कहफ में मिल जाता है, और रूह का यहाँ पे बताया गया। अब रूह के माने क्या होते हैं, रूह कुरान में किस तरह से यूज हुआ ये वर्ड, हम किसको रूह कहते हैं? हम तो उसको रूह कहते हैं ये जो हमारे जिस्म के अंदर है, जिससे इंसान चलता फिरता है, ये निकल गई तो खत्म है इंसान, ठीक है, हम उसको रूह कहते हैं। लेकिन कुरान पाक में उसको भी रूह कहा गया, लेकिन कुरान पाक में रूह वही के लिए भी आया, क्योंकि वही भी रूह ही है ना इंसान के। ये वही का इल्म आता है तो इंसान इंसान बनता है, वरना तो वो हैवान की सतह पे जिंदगी गुजारता है। इंसान जिंदा उस वही से ही है, वही के इल्म से, वरना तो अल्लाह के नजदीक मुर्दा है, वो भी वही है। इसी तरह रूहुल कुदस, आपको पता है रूहुल कुदस किसको कहा गया, रूहुल अमीन किसको कहा गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, तो वो भी रूह है। तो सारे ही माने हो सकते हैं कि वो उन्होंने आके आपसे पूछा कि वही क्या है, या वही लाने वाला क्या है, इसका सोर्स क्या है, कैसे आती है, कहां से आती है, किस तरह आती है, आपके ऊपर कैसे नाजिल होती है, हमें तो इसके बारे में बताएं, हमें तो नहीं समझ आती ये कि भई आप इतना वही का बताते हैं, तो ये किस तरह से है, ये सारा प्रोसेस कैसे है, इसका सोर्स कैसे है, तो उसके बारे में बताया गया कि ये कुल कह दीजिए आप ए नबी इनको बता दें क्या, अर्रूह मिन अम्री रब्बी, ये अल्लाह के अमर से है, अल्लाह ताला के हुक्म से है जो रूह है, यानी इस रूह को का ताल्लुक आलम खल्क से नहीं है, एक आलम अमर है एक आलम खल्क है। एक आलम वो है जो कि हम उसको समझ इसलिए नहीं सकते कि वो अल्लाह ताला का अमर है और उस हमारी सोच से बियॉन्ड है, वो मादी मटेरियल नहीं है कि इंसान को समझ आ जाए। उलमा ने इसी से आलम अमर और आलम खल्क दिए दो जहानों का जिक्र किया है ना, तो ये अल्लाह के अमर से है, बस उसके हुक्म से है, जो वही का स्ट्रक्चर है, वही कैसे आती है, कैसे फरिश्ता उसको याद रखता है, कैसे फरिश्ता आता है, क्या अल्लाह ताला फरिश्ते से कैसे कहता है, कैसे बुलाता है, कैसे होता है। बस हमारा ये ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथहर पे, आपके दिल मुबारक के ऊपर वही नाजिल होती है जिब्राईल अलैहि सलाम के जरिए अल्लाह की तरफ से, बस ये हम समझ सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि रूहुल कुदुस क्या है, तो जिब्राईल अलैहि सलाम, बस हमारी हम कैसे हैं, वो क्या है क्या नहीं है, कैसे ला रही हैं क्या, वो हमें नहीं, हम बस इसके ऊपर ईमान रखते हैं, इसका ताल्लुक ईमान से है ना। वमा उती तो मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें तो जो इल्म दिया गया बहुत थोड़ा है, क्योंकि वो तो कहते थे ना हमारे पास तौरात का इल्म है, हमारे पास हम अहले किताब है, हमारे पास तो बहुत नॉलेज है, तुम्हें तो बहुत थोड़ा नॉलेज दिया गया, तुम नहीं इसको समझ सकते। और अगर इंसानी रूह का इससे मतलब लिया जाए तो फिर तो कोई जान ही नहीं सकता इंसानी रूह क्या चीज है, अल्लाह ताला ने बनाई, क्योंकि आज तक आप देखें कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अगर सोल जो है, इसको सोल को तो सब लोग मानते हैं ना कि ह्यूमन सोल है, एक रूह है इंसान के अंदर, लेकिन वो क्या है, कैसे है, क्या कुछ कुछ के पता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने रूह फूंकी इंसान के अंदर, ये हमें कुरान से पता चलता है, लेकिन वो रूह की कैफियत क्या चीज है, वो रूह वो क्या चीज है जो निकल जाती है, वो आ जाती है बच्चे के अंदर, आ जाती है माँ के पेट में, तो वो बच्चा हिलना जुलना शुरू हो जाता है, माँ को मूवमेंट्स फील होती हैं, वो रूह निकल जाती है तो डेड है कि इंसान, वो क्या चीज है, वो दिखाओ, वो महसूस करो, वो उसको सूंघो, उसको देखो, कुछ भी नहीं। साइंस तो कहती है ना कि हम उसके ऊपर यकीन ही नहीं करते, जो चीज है जो आप सुन सकते, देख सकते, महसूस कर सकते, बस वो चीज है, बाकी नहीं, रूह को कैसे जानेंगे। तो तुम्हें नहीं इल्म, तुम नहीं जान सकते, हर चीज हवास से नहीं, आप अपनी ये जो आपके हवास हैं, देखना सुनना चखना, इनसे हर चीज नहीं महसूस हो सकती, इससे बियॉन्ड भी चीजें हैं, इंसान को तो बहुत कम इल्म दिया गया। तो इंसान के इस सवाल का जवाब जो है ना, कितना मुख्तसिर दे के उसको चुप करा दिया गया, जो चीज जान ही नहीं सकते, इसको समझ ही नहीं सकते, हमारी अकल की कैपेसिटी ही नहीं है, कैसे समझाई जाए, ना तजर्बे से समझ आ सकती, ना मुशाहदे से समझ आ सकती, किसी तरह भी नहीं आ सकती। वाला इन शिना लनذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا, और अलबत्ता अगर हम चाहते, अलबत्ता हम जरूर ले जाते इस चीज को जो वही की हमने, यानी कुरान, हम इस कुरान को ले जाते अगर हम चाहते, यही है ना वही किया गया, इलेका आपकी तरफ, अगर हम चाहते तो हम इस कुरान को ले जाते, सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर ना तुम पाते हमारे ऊपर कोई कारसाज, हमारे हमारे खिलाफ, हमारे मुकाबले में कोई कारसाज ना पाते। असल में ये एड्रेस तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया जाता है, किया जा रहा है, लेकिन मुखातिब वो मुशरिकीने मक्का है, जो ये एतराज करते थे ना कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही घड़ के ले आते हैं, कोई इनको सिखा देता है, ये ले आते हैं, तो कहा गया कि अगर अल्लाह चाहे तो इसको उठा ले, रोक दे वही को, पता चल जाएगा कि ये नबी का कलाम है कि अल्लाह का, वो तो नहीं ये कलाम ला सकते, तो अगर हम चाहें तो इसको ले जाएं इस वही को, फिर कोई वो मुकाबला भी नहीं कर सकता अल्लाह का कि वो जबरदस्ती ले आए कहीं से। तो उनको जवाब दे दिया गया कि तुम जो ये इतराज करते हो कि ये इनका, ये खुद लाते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, इल्ला रहमत मिन रब्बिक, ये तो अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, रहमत को कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में रहमत आए, अभी भी हमने पहले भी पढ़ा कि ये शिफा और रहमत है। हम सब कभी कहते हैं कि हमारे घर में हम रहमत के लिए अल्लाह रहमतें करे, बरकतें करे, दुआएं भी करते हैं, मगर कुरान की तरफ आना नहीं चाहते, जिसको अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इसमें रहमत है, यहां पे भी फरमाया ये रहमत है तेरे रब की तरफ से, चाहते हैं रहमतें जिंदगी में, लेकिन इस तरफ आते क्यों नहीं? जिसको अल्लाह ताला बता दे ये रहमत है, इसको अपनी जिंदगी में लाते क्यों नहीं? इससे जुड़ते क्यों नहीं? इन्ना फ़ज़लहु काना अलैका कबीरा, बेशक फजल उसका आप पर ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा है। तो खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करके उनको सुना दिया गया कि तुम ये अगर समझते हो तो अल्लाह ताला ले जाए, तो फिर बताओ कौन लेकर आएगा इसको? कौन है जो वकील है? कौन है जो अल्लाह का मुकाबला करे? ये तो रहमत है, सरासर रहमत है कि उसने ये कलाम दे दिया। और दूसरे ये कि इस कलाम का किसी की जिंदगी में आ जाना भी रहमत है। आपके ऊपर अल्लाह की बड़ी रहमत है अगर आपको ये मिल जाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है आपके ऊपर कि आपके ऊपर अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा। अच्छा, आप थोड़ा सा गौर करें इस बात पे कि ये आयत कब उतर रही है। ये उस वक्त उतर रही है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हो रही है, आपको साहिर और मजनून कहा जा रहा है और आपको शायर कहा जा रहा है और आपको ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, और मतलब इतने मुश्किल हालात हैं। आपको पता है ये आयत, तो ये जो सूरा है ये उतरी है जिस वक्त के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने वाले हैं। एक साल के बाद आपने हिजरत कर ली थी। ये देखो रब्बी अदखिली मुदखला सिदकिन वाली दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई ना आपको, हिजरत करने का एक तरह से एक पैगाम आ गया, उस वक्त उतर गया। और उस वक्त के हालात इमेजिन करें कि कितने मुश्किल होंगे कि एंड अप किस पे करते हैं, हिजरत पे। अब इन हालात के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह ताला का आपके ऊपर फजल बहुत बड़ा है। आप इमेजिन अपने आप को करें, आपके ऊपर बड़े मुश्किल हालात आए हैं और आपको कोई कह दे कि अल्लाह का बड़ा फजल है आपके ऊपर, आप कहेंगे क्या क्या फजल है, क्या आपका फजल है, मुझे तो ये मुश्किल, मुझे तो वो मुश्किल, मुझे तो ऐसे। लेकिन यहां से पता चलता है जिसका ताल्लुक कुरान से जुड़ गया उसके ऊपर कितनी भी मुश्किलें हैं, अब आपकी जिंदगी में कितनी भी आजमाइशें हैं, लेकिन अगर कुरान आपकी जिंदगी में आ जाता तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल समझे अपने ऊपर। इससे बढ़ के कोई और फजल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला उन हालात में अपने नबी को फरमा रहा है कि आपके ऊपर अल्लाह का फजल है। यकीन करेंगे आपके उन हालात में कहा जा रहा है, कैसे हालात थे, तो फिर हमारे ऊपर भी अल्लाह का फजल है चाहे हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें कुरान दिया हुआ। अल्लाह अकबर, इसको फजल समझें, इसको जानने की ये फजल है अल्लाह का। कुल कह दीजिए ला इन इजतमात अल इंस वल जिन, कह दीजिए अलबत्ता अगर जमा हो जाए इंसान और जिन, किस बात पे? अला अन यातू बिमिथलि हादल कुरान, कि वो ले आए माने दिस कुरान के, ला यातू ना बिमिथलि, तो नहीं ला सकते इसके जैसा। वलो काना बादुहुम लिबादिन जहीरा, चाहे वो एक दूसरे के इसमें मददगार भी हो जाए। तुम कहते हो कि एक नबी लेकर आ गया इसको बना के, इसको घड़ के ले आया, ये उनका कलाम है, उन्होंने किसी से किसी गुलाम से सीख लिया और ले आए, ये रहती दुनिया तक अल्लाह ने चैलेंज कर दिया कि एक बंदे का तुम कह रहे हो कि वो लेकर आ गया, तुम सारे इंसानों को जमा कर लो, जिन्नों को भी कर लो, सारे इंटेलेक्चुअल्स अपने जमा कर लो, सारे ब्रेन्स अपने जमा कर लो, बहुत बहुत पीएचडीज और बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े इल्म वाले हैं उन सबको जमा कर लो और इस जैसा कुरान ले आओ, नहीं ला सकते। चाहे एक दूसरे के मददगार कर बन जाओ, सब सर जोड़ के बैठ जाओ। और ये चैलेंज सिर्फ यही नहीं है, सूरह बकरा आयत 23-24 में भी है, यूनुस 38 में भी है, हूद 13 में भी है, यहां पे भी है, और सूरह तूर में भी है 33-34 में। ये चैलेंज है सब थिंक टैंक्स को, लाओ इस जैसा। और ये तो एक आयत भी लाने का चैलेंज है, पूरी किताब तो क्या, यहां पे तो एक ऐसी किताब लाने का चैलेंज किया गया ना, खुला चैलेंज है कि एक बात बना के ले आओ, एक बात, क्योंकि ये खालिक का कलाम है। और इसी वजह से सूरह कौसर जब उतरी थी तो हजरत अली ले जाके उसको लिख के काबे में लटका दिया था, जहां पे बड़े बड़े शोरा अपने कलाम को लटकाते थे, तो कोई लिख के चला गया उसके नीचे के ये कलाम किसी बशर का नहीं हो सकता, हमें तो समझ ही नहीं है, तो हमें एकदम पता नहीं है। और ऐसा ना समझे कि किसी ने कोशिश नहीं की, लोगों ने बहुत बहुत कोशिशें की हैं। अब मिर्जा कादियानी ने कहा कि जी मेरे पर भी वही नाजिल होती है, यानी ऐसा कलाम जो अल्लाह का कलाम है ना, इस जैसा मेरे पर नाजिल होता है घड़ा हुआ। आज तक उस कलाम को आपने देखा भी है कि वो क्या है? तो ये ऐसा कलाम है जो जो मौजज़ा है, जो टेढ़े दिलों को सीधा कर देता है, और किसी में कैपेबिलिटी नहीं कि ऐसा प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल उनके अंदर रहे थे, लेकिन आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आयत नहीं आपकी जुबान से अदा हुई, कोई अल्लाह का कलाम आपने नहीं कहा कि ये अल्लाह का कलाम है। अगर खुद खड़े होते तो उस वक्त ना ले आते, तो ये बता दिया गया दुनिया रहती दुनिया को कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। और आज देखें कि इस कलाम के साथ हमारा रवैया क्या है, जो फजल है, जो रहमत है, इसकी हम कितनी नाशुक्री कर रहे हैं। ये नाशुक्री तो है कि इसको वो हम ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सिर्फ इतनी है कि चूम के रहो ऊपर रख देना, ये ड्यू रिस्पेक्ट असल, ये भी रिस्पेक्ट है, लेकिन ये असल रिस्पेक्ट है कि हम इसको अपनी जिंदगियों में शामिल करें, इसको किसी काबिल समझें कि हम इसको पढ़े। सारी दुनिया की किताबें इस काबिल है हम उसको पढ़े, लेकिन कुरान नहीं है। इसकी इतनी वैल्यू भी नहीं है कि हम इसके ऊपर अपनी जिंदगी के कुछ साल लगा दें। पहले आने से पहले ही पूछते कितनी क्लासें होंगी, कितनी देर की क्लास होगी, कितने साल में खत्म होना है, इनको खत्म करने की जल्दी है। खत्म कब हो जाएगा, यानी हम अभी शुरू किया नहीं है, खत्म कब होना है, सर्टिफिकेट मिल जाए हम, ये सिर्फ इसलिए सर्टिफिकेट, इतनी घटिया चीज के लिए इस कुरान को पढ़ना, इसको सीखना, एक कागज के पुर्जे के लिए ये वर्थ आपने रखी इस कुरान की? तो इसकी वर्थ को समझिए खुदा के लिए, इसका तो मुकाबला जिन और इंस मिल जाए तो नहीं कर सकते, इससे बेहतर तो दूर की बात इस जैसा भी नहीं ला सकते, इसके ऐसी एक आयत नहीं ला सकते। लेकिन ये हमारे यहां इसकी वैल्यू है कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है जो इस कुरान को जानती है, जिस जो इसका हक दे रही है, इसको समझती है, जो इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करती है, जो इसको अपना इमाम बनाती है कि हम इसको फॉलो करेंगे, कुरान को हमने फॉलो करना है। तो अल्लाह ताला ने फिर गिला किया, वलकद सर्रफना लिन्नासी फी हादल कुरान मिन कुल्ली मथल, और अल्लाह ताला तहकीक फेर फेर के हम इस कुरान में लाए हैं, हर तरह की मिसाल के साथ लाए हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों का रवैया क्या होता है? फअबा अक्सर उन्नास इल्ला कुफूर, तो नहीं माना अक्सर लोगों ने, मगर इनकार करना, इनकार ही करते रहे, उन्होंने मान के ही नहीं दिया इसको, इसका इनकार करा। और एक काफिर तो इनकार करता ही है जो कुरान को रिजेक्ट कर देता है, कुछ लोग जुबान से रिजेक्ट नहीं करते, वो अपने अमल से रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको इसके अहकामात के ऊपर एतराज है, क्योंकि उनको इसकी बातों पे एतराज है, वो हर तरह के इतराज लेकर आ गए। कभी कहा नहीं ये तो असाती रोल बनी है, पुरानों की कहानी है, कभी कहा कि नहीं इसमें तो बार बार एक ही बातें बार बार होती जा रही, कभी किसी ने कहा कि ये तो इंसान का कलाम है, कभी किसी ने कुछ बात की, कभी कुछ बात की, एतराज ही एतराज, टेढ़पन निकालने की कोशिशें करना, कभी इसके पर्दे के हुक्म पे एतराज, कभी सूद के ऊपर एतराज, कभी शराब हराम कहाँ है उसके ऊपर बातें करनी, जबकि अल्लाह ताला ने कितनी तरह से हमें समझाया इसमें, क्या हम अभी भी इसकी वैल्यू नहीं जानते, इसको नहीं समझते? शिफा रहमत और क्या चाहिए हमें? तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस कुरान को ड्यू रिस्पेक्ट दे सके, इसका ड्यू हक दे सके, जिसके काबिल है ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का नहीं। अगर मुशरिकीन मक्का भी मान गए, हालांकि उन्होंने भी कोई कम कोशिश नहीं की कि हम इसके जैसा ले आए, आपका मतलब था आराम से बैठ कर ये सुन के, किधर है आज उनके कलाम, कोई मुकाबला नहीं कर सका, वो खुद आजिज आ गए, उन्होंने खुद बोल दिया, वो तो खुद अहले जुबान थे, उन्होंने खुद कह दिया कि नहीं हम कर सकते मुकाबला, सूरह कौसर तक का नहीं कर सके, एक आयत नहीं ला सके। तो ये इतनी काबिले कदर चीज है, खुदा के लिए इसकी कदर करें, इसको सिर्फ ऐसे ही बस ये सोच के कि हाँ बस की तिलावत करके इसी से सवाब कमाना है हमने, सिर्फ ये कोई जंतर मंतर की किताब ना समझे, सिर्फ तावीज लटकाने या सिर्फ दम करना इसको इस हद तक ना समझे, वो भी है इसके अंदर फवायद हैं, लेकिन मकसद ये नहीं है, फायदे तो बेशुमार हैं इसके, मकसद है हिदायत, अल्लाह ताला हमें इससे हिदायत लेने वाला बना दे और इसको हमारा साथी बना दे, इस दुनिया का भी, कब्र का भी और हशर का भी, और अल्लाह ताला हमारा खात्मा भी इस कुरान के साथ ही करे कि हम इस कुरान को पढ़ने वाले हों जब हम इस दुनिया से रुखसत हों। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا